मैंने जब सीमा को ये करते देखा तो हैरान रह गई। मैं सीमा के पास गई और मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, वो डर के क्यों भाग गई? तो उसने कहा कि वो आदमी उसे ही ढूंढ रहा है। मैं उसकी बात कुछ समझ ही नहीं पाई, वो ऐसा क्यों कह रही है कि कोई उसे ढूंढ रहा है? वो आदमी जो बार में आए थे, वो लोग कोई नेता जैसे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी बड़ी पद पर बैठे हैं। सीमा जल्दी से बार छोड़ना चाहती थी, उसने मैनेजर से कहा कि उसे बार छोड़ना है, लेकिन मैनेजर एक नंबर का कमीना इंसान था। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर सीमा ने बार छोड़ा तो वो उसे आज के पैसे नहीं देगा, यहाँ तक कि इस महीने तक के भी पैसे नहीं देगा। सीमा को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, उसे अपने बच्चों के लिए खाना ले जाना था। मैंने सीमा की उस बार से निकलने में मदद की और उसके हाथ में कुछ पैसे भी दिए। सीमा वो पैसे लेकर ऐसे भागी जैसे कि सच में अगर वो यहाँ पर रुकती है तो उसकी ज़िंदगी नरक से बदतर हो जाएगी। मैं वापस स्टेज की तरफ आ रही थी कि तभी मैंने देखा सीमा का बैग यहीं पर छूट गया है। मैं जैसे ही उस बैग को लेती हूँ, उसमें सीमा की दवाइयाँ थी। सीमा डिप्रेशन की पेशेंट थी, ये दवाइयाँ उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए मैं दोबारा क्लब से बाहर निकलती हूँ और सीमा को वो बैग देने के लिए उसे सड़क पर ढूंढने लगती हूँ। रात काफ़ी हो गई थी लेकिन सीमा को निकले ज़्यादा देर नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने सड़क पर चलते हुए उसे ढूंढना शुरू किया। मुझे अभी क्लब से निकलते हुए सड़क पर चलते हुए 5 मिनट ही बीते होंगे कि तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे कार के पीछे कुछ हो रहा है और उसे देखकर मेरे पूरे शरीर का खून अपनी जगह पर जम जाता है। ये सीमा थी, एक गाड़ी के पीछे और जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। सुनसान सड़क, रात का अंधेरा और आसपास का सुनसान माहौल, यहाँ पर कोई नहीं था उसकी चीख सुनने के लिए। तभी मेरी नज़र उन लोगों पर गई, वो 2-3 लोग थे और ये वही लोग थे जो सीमा को ढूंढने के लिए क्लब में आए थे। वो लोग सीमा का रेप कर रहे थे, सड़क पर ही उन्होंने सीमा के साथ बलात्कार किया। एक आदमी सीमा के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसके बाकी के साथी जोर जोर से हंस रहे थे। इससे पहले उनकी नज़र मुझ पर पड़ती, मैं एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। मैं उस समय अपनी दोस्त की मदद करना चाहती थी, उसे बचाना चाहती थी, लेकिन मैं असहाय थी क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था अगर उन लोगों की नज़र मुझ पर पड़ेगी तो मेरा भी वही हश्र होगा जो इस समय सीमा का हो रहा है। उस समय मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक आदमी सीमा के ऊपर से उठता है और दूसरा चढ़ जाता है। उस समय मुझे ये सारी दुनिया नर्क के समान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सामने का ये दृश्य मौत का मंजर है। मेरी सहेली मेरी आंखों के सामने लुट रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। सीमा की चीख धीरे धीरे घुटन में तब्दील हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले रही है। मुझे ऐसा लगा जैसे सीमा ने अपना शरीर छोड़ दिया है और इसी डर से मैंने एक हल्की सी चीख के साथ कहा, सीमा। पर शायद मेरी चीख इतनी धीरे थी कि सीमा के कानों तक नहीं गई, पर शायद वो इतनी तेज थी कि उन दरिंदों के कानों तक चली गई। उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर कोई और भी है और वो लोग मुझे ढूंढने के लिए आसपास के इलाकों में खोजने लगे। मुझे पता चल गया था अगर मैं उनके हाथ लग गई तो मुझे बहुत बुरी मौत मिलेगी, इसीलिए मैं तुरंत वहां से भाग गई। मैं भागकर सीधे अपने घर गई। मेरे पति अपाहिज थे, जब उन्होंने मुझे ऐसा घबराया हुआ देखा तो उन्होंने मुझे इसका कारण पूछा, लेकिन मैं उस समय इतनी डर गई थी कि मैं कुछ नहीं बता पाई और उस वक्त मैं अपने पति को लेकर अपने घर को छोड़कर दूर चली गई। लेकिन वहां जाकर भी मुझे सीमा की चीख और उसकी यातनाएं याद आ रही थी। मेरी अंतरात्मा मुझे इस बात के लिए धिक्कार रही थी कि मैंने अपनी सहेली की मदद नहीं की। कुछ समय बाद मैं अपने पति के साथ वापस शहर में आ गई और फिर मैं सीमा से मिलने गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि सीमा ने आत्महत्या कर ली है। उसकी मौत का सुनकर मेरी बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई। मैं बहुत रोई थी और तब जाकर मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। मेरे पति ने पहले मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि मैंने एक औरत होकर एक औरत का साथ नहीं दिया और उसकी मदद नहीं की। मेरे पति के कहने पर मैंने पुलिस कंप्लेंट करवाने की सोची क्योंकि उस हादसे की चश्मदीद गवाह मैं थी। इसीलिए अपने मन को मजबूत करके मैंने सीमा की मदद करने की सोची। मैं जीते जी तो उसका साथ नहीं दे पाई, कम से कम मरने के बाद उसके पापियों को सजा तो दिलवा दूं। यही सोचकर मैं पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाते ही मेरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वहां का SP उन लोगों के साथ बैठकर पार्टी कर रहा था। ये वही तीनों थे। मैं इन तीनों की शक्ल कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं वहां से वापस आ गई। मैं उन पुलिस वालों से कैसे मदद की उम्मीद रख सकती हूँ जो सीमा के दोषियों के साथ मिलकर हंसी मजाक कर रहे हैं। उसके बाद मैं सीमा के घर गई। मुझे पता चला कि सीमा ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन सीमा के बच्चे मैं उन्हें रखना चाहती थी। अपनी सहेली की आखिरी निशानी को मैं अपने पास रखना चाहती थी, पर पड़ोसियों ने मुझे बताया कि सीमा के बच्चे भी उसके साथ आग में जलकर मर गए। आखिरकार हार कर मुझे सीमा का केस छोड़ना पड़ा, लेकिन मन के एक कोने में ये बात हमेशा से जिंदा थी कि सीमा को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ जो गलत हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए और उसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अपनी पूरी बात कहने के बाद कल्पना जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अपनी सहेली के साथ हुआ हादसा ऐसा याद आया जैसे कि ये कल की ही बात है, लेकिन यहाँ पर आस्तिक की आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो अपनी माँ के अफसोस के लिए नहीं थे, बल्कि ये आंसू वो दर्द है जो आस्तिक कई सालों से अपने सीने पर लेकर जी रहा था।